अल्लाह ताला से बहुत अच्छी अच्छी दुआएं करते हुए हम सूरत अनफाल को शुरू करेंगे। सूरत अनफाल से कुरान पाक का एक नया रुख शुरू होता है। पिछली जितनी भी सूरतें हमने पढ़ी जो मदनी थी, उन सब में खिताब किन से था और ज़्यादा बात उसमें किसकी आई, तारीख की आई, तो यहूद की हुई और कहीं नसारा की हुई। आप कह सकते हैं कि अब जो चार सूरतें हैं इनमें खिताब बनी इस्माइल से है। सूरत अलानाम से लेकर सूरत आराफ तक जो हम पढ़ चुके, ये हिजरत से पहले नाजिल हुई थी दो सूरतें, और सूरत अनफाल से तौबा, ये दो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई। इसी तरह सूरत अनफाल जो है सूरत बकरा और सूरत मोहम्मद के बाद नाजिल हुई। सूरत अनफाल पूरी की पूरी एक ही खुतबे में नाजिल हुई। बदर के बाद के हालात पर तबसरा है। पहली दफ़ा एक जंग हुई, दुश्मन से जो माल मिला अब उसके साथ क्या किया जाए, तो सवाल उठ गया कि माल गनीमत का क्या किया जाए, तो जवाब फौरन देने के बजाय वो तमाम तरबियती असूल बता दिए कि जो फतह को हैंडल करना सिखाते हैं। पीछे हम सूरत आल इमरान में ग़ज़वे उहद की सूरत में शिकस्त को हैंडल करना सीख चुके, अल्लाह करे हमने सीख लिया हो। यहाँ अल्लाह सुबहाना ताला बदर में हमें कामयाबियों को हैंडल करना सिखाते हैं। और हकीकत यह कि ये दो ही मामले हम सब के साथ होते हैं ज़िंदगी में, जब हम इन दो में चल पड़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें बताते हैं। याद रखिए कि मुसलमान किसी भी दौर के हों, उनमें कमज़ोरी दो वजह से आती है। एक ये है कि जब नाकामी हो, यानी वो रिजल्ट्स नहीं निकल रहे जो आपने सोचे हैं, तो उससे कमज़ोरी पैदा होती है, दिल टूटने लगता है और इंसान कहता है क्या फ़ायदा, छोड़ो मैं क्यों करूं, कोई रिज़ल्ट तो अच्छा निकल नहीं रहा। दूसरी वजह होती है कि जब इंसान अपनी कामयाबियों की वजह से तकब्बुर का शिकार हो जाए। हाँ वाकई हमें फतह नहीं होनी तो और किसको होनी है, अल्लाह ने तो सारे वादे हमसे किए और हम तो अब कुरान भी पढ़ते हैं। और जब इन दीन वाले के अंदर इस किस्म का किब्र शामिल हो जाता है कि मैं जैसा, मेरे जैसा कौन, और जो मैं कर सकता हूँ कोई नहीं, और शिकस्त तो मुझे आ ही नहीं सकती, तो ऐसे दौर में फिर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है। इन दोनों में हमें ये बता दी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, यहाँ ये भी बात हमें बता दी। थोड़ा सा एक मसला भी समझ लीजिए, यहाँ से ये सूरत और अगली सूरत यानी सूरत अनफाल और सूरत तौबा में हम एक बुनियादी असूल को अभी समझ लें। बहुत सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टेररिज्म का गिला करते हैं, आज हम मुसलमानों को भी इस तरह की कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, और कहते हैं कि आपके नबी ने तलवार के ज़ोर पे दीन फैलाया। तो पीछे सूरत अल अराफ में हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पिछली कौमें जब अपने नबियों को झुठलाती थी तो उन पर यक बारगी असाब आ जाता था। नबी को और चंद दीन जो उनके साथी होते थे उन सबको कहा जाता था बस्ती छोड़ दें, और उसके बाद कभी किसी पर जलजला और कभी किसी के ऊपर चिंगाड़ और पत्थर बरसे, ये हम सब सुन चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुमकिन तो ये था ना, जब 13 साल मक्का में लोगों को दीन की बात बता दी, हर मुमकिन कोशिश कर ली, तो कहा जाता पकड़ो जिब्राइल, इन सबको पटक के मार दो, इन पे कोई जलजला ले आओ, कुछ इन पे भी पत्थर बरसा दो। लेकिन चूंकि नंबर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आपके बाद कोई और नबी नहीं आना था, अल्लाह ताला ने रहती ही दुनिया तक हिदायत के इस पैगाम को आम करना था, पहली वजह। दूसरी बात यह कि दूसरे अंबिया कराम जो थे उनके साथ चलने वाले बहुत थोड़े थे, आटे में नमक के बराबर, हैंडफुल आप कह सकते हैं, तो उनको बचा के निकाल लेना और दुश्मन जो बहुत ज़्यादा थे उनको लेना बहुत आसान भी था और लॉजिकल भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी ज़िंदगी में ही लाखों लोग ईमान ला चुके थे, ये अल्लाह के नबी का मुकाम। और ये जुमला मैंने बोला है ना, तो एक छोटी सी बात आपको बताऊं, आज दुनिया में क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा बड़ा मज़हब है हेड काउंट के अतबार से, यानी आप कह सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया था उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 12 लोग थे, और इल्ला माशाल्लाह हवारियों के साथ 12 का नाम आता है। कुछ होंगे भी तो कोई कच्चे पक्के ही मान के होंगे, लेकिन जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रहलत फरमाई उस वक्त लाखों थे। तो अल्लाह सुबहान तला ने यहाँ कानून को बदला, کیا کیا جاتا؟ وہ کام جو جبرائیل کے ذریعے کروایا گیا پچھلی قوموں سے، وہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ذریعے سے مختلف میدانوں میں، جب دشمن اسلام کو مارنے، جب مسلمانوں کی دشمنی میں نکلے اور مسلمانوں کو ختم کرنے اور اسلام کی تاریخ مٹانے کے لیے نکلے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت پھر جنگوں کے ذریعے وہ سارے سر کٹوا دیے کہ جن کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی تھی۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی سمجھی، اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی سمجھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ بہت تھے، جب فرعون ڈوبا تو بنی اسرائیل جو آپ کے ساتھ دریا سے باہر ہوئی تھی وہ لاکھوں میں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ مشن پورا نہیں ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا ہوا۔ وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اچھے ساتھی نہیں ملے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی بہت گنتی کے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو جیسے بھی بڑھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا لوگوں کو، یہ آپ کے بعد بھی چلتا رہا۔ چلتا رہا کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وجوہات ہیں، بڑا بڑا کر کے لکھ لیں، اللہ آپ کو زندگی میں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، میری دعا ہے آپ سب کے لیے۔ لیکن اس کے لیے یاد رکھیے کہ بنیادی اصول سمجھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں یہ مشن کیوں ہو رہا ہوا؟ کیوں کہا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، اور کیوں کہا کہ اذا یدخل، وہ کیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا؟ اس کی دو وجوہات تھی۔ نمبر ایک، آپ کو ساتھی اچھے ملے، ان کے اندر خیر تھی، آپ کے ساتھی اچھے تھے، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کو ٹرم کیا۔ اگر ان میں کہیں کوئی انا بڑی بھی تھی تو اس کو اوپر سے کاٹ کے چھوٹا کر دیا، اور اگر کسی کی انا کم تھی تو اس کو ہر دل مومنین علی القتال کی صورت میں تھپکیاں دے کر، تسلیاں دے کر، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا کہ آپ کا ایک بہترین گروہ تیار ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، دین اسلام کا مزاج سمجھنا ہی مشکل ہے آج مسلمانوں کو، دوسروں کی بات کیا کریں۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے تبلیغ، جو آج اور میں اور آپ کرتے ہیں، اکثر ہی آپ دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے دین کا نفاذ، اس کو اپلائی کرنا۔ اب جملہ جو بولوں گی نا اس کو لکھ لیں، تبلیغ اور نفاذ دین کے درمیان میں قربانی اور ہجرت ہوتی ہے۔ کرسی پہ یہاں بیٹھ کے میں آپ کو جتنی مرضی باتیں کہوں، اور آپ بھی بہت آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھ کے جتنی مرضی سنیں، یہ تبلیغ ہے، آپ تک پہنچ گیا، میں نے پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جہاں جو سنا ہے، یہاں سے جو ایمان آپ کو ملا ہے، اس کو اپنی عملی زندگیوں میں لانے، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں لانے کے لیے جو آپ کو کوشش کرنی ہے نا، اس کے بیچ میں قربانیاں ہوں گی، آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی اور بہت ساری چیزوں سے ہجرت کرنی پڑے گی، پھر آپ اپنی زندگی میں اس اسلام کو نافذ کریں گے۔ یہی اصول فرد کے لیے، یہی قوم کے لیے، اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے آج یہی ہے۔ آج ہم مسلمان کیوں نہیں اسلام کو اسٹیبلش کر پائے؟ کیونکہ ہم قربانیوں سے ڈرتے ہیں، ہم ہجرتوں سے ڈرتے ہیں۔ ایسا آئینہ ہے یہ سورت انفال اور سورت توبہ کہ کمزور دل والے تو اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے، تو ابھی سے چلے جائیں وہ لوگ جو کمزور دل والے ہیں، کیونکہ اللہ کا مزاج ان دو صورتوں میں ہمیں سمجھ آتا ہے۔ آج بھی ہمیں اسی کی ضرورت ہے، تربیت، قربانی اور ہجرت، یہ تین بڑے بڑے لفظ لکھ لیجئے کہ جب تک تربیت نہیں ہوگی انسانوں کے گروہ کی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے تو دین کی اداروں میں جا کر بھی تربیت نہیں ہوتی، دین کی کلاسوں میں بھی ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، ہماری مرضی سے استاد چھٹی کر دیتے ہیں، ہمارے پریشر میں آ کے وہ وقت کم کر دیتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اور ہم بعد میں ان کے ساتھ ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تربیت نہیں ہو رہی، علم بھی آ رہا ہے لیکن ہمیں سیلف کنٹرول نہیں آ رہا۔ سیل فون بج رہے ہیں تو بجے، بچے بیچ میں دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں تو چلیں، لوگ نہ ناراض ہو جائیں، چلو کوئی نہیں، ایک ذرہ برابر دل پہ کسی کا اثر ہو نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے، جس وقت آپ پہ پابندیاں لگتی ہیں نا، کہ صفحہ آرام سے پلٹیں، قلم کی بھی آواز نہ آئے، سیل فون بند کریں، ادھر نہ دیکھیں، یونیفارم پہنیں۔ یہ اصل میں یہ صرف کلاس روم کا پروٹوکول نہیں ہے، یہ ایک مومن کو ایک پابند بندہ بننا سکھاتا ہے۔ और यहाँ 3-4 घंटे की तरबियत के बाद जब यहाँ से हम ये चीज़ सीख के निकलते हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम आम दुनिया वालों के बीच में डिसऑर्गेनाइज मशहूर हों और हम जहाँ चाहें अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दें और जब चाहें खाने लगें, जब चाहें सोने लगें। अब इन सारी बातों की रोशनी में आइए इस सूरत को देखते हैं और याद रखिए कि सूरत अल अनफाल का जो मेन थीम है ना, वो क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत में जान और माल को लगाना और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी ज़िंदगियों से इन चीज़ों को, सब चीज़ों को निकाल देना जो अल्लाह के रास्ते की रुकावट हों। शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनफाल। अनफाल का लफ्ज़ नफिल से है। नफिल कहते हैं वो चीज़ जो मतलूब तो नहीं है, ज़रूरत से ज़ायद, यानी अपनी खुशी से कोई करे। इसी को अरबी में फिर तत्वो कहते हैं, तौन कहते हैं खुशी को। तो अनफाल माल गनीमत का दूसरा नाम है। और माल गनीमत क्या होता है कि जो दुश्मन से जंग के बाद अचानक मिल जाता है। जब शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। ये है लफ्ज़ गनीमत की तारीफ। मुसलमान हुक्मरान ना तो लोगों के माल लूटने के लिए जाते हैं, न ज़मीनों पर कब्ज़े करने के लिए, न गैस के रिसोर्सेज को लेने के लिए। जाते वो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, लेकिन इत्तफाक से वहाँ अगर दुश्मन से कुछ माल मिल जाए तो उस माल का क्या किया जाए। तो सूरत शुरू होती है, यसअलूनक अनिल अनफाल कुलिल अनफाल लिल्लाहि वर्रसूलि फत्तकुल्लाह वस्लिहु ज़ात बैनिकुम। आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुक दुरुस्त करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्लाह अकबर, अजीब तमहीद है। ऐसी सूरत तो कभी आज तक नहीं देखी। सवाल से सूरत शुरू हुई। जब ग़ज़वे बदर हुई, अचानक हुई, कैसे हुई, उसके हालात आगे आ रहे हैं, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो मुसलमानों के जहन में एक सवाल उभरा कि ये माल जो दुश्मनों से मिला इसका क्या किया जाए, क्योंकि इससे पहले लूट मार पड़ जाती थी, कोई डिसिप्लिन जो नहीं था। अनट्रेंड लोग यही करते हैं, जिसके हाथ में अथॉरिटी होती है वो अपनी अथॉरिटी को ना सिर्फ ये कि खुद चूज़ करता है बल्कि अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी इसके फ़ायदे दे देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर ऐसा मिजाज नहीं था। वो हर काम करने से पहले चाहे चंद जुमलों में, चंद लफ्ज़ों में पूछ लेते थे क्या ये काम ठीक है। एक क्या था कि पकड़ते और माल लूट के घर ले जाते, बाद में कहते मैं आपने कुछ कहा ही नहीं, हम समझे हमारा ही होगा। ये भी एटीट्यूड नहीं था साहबा का। उन्होंने आके अल्लाह के नबी से पूछा कि इसका क्या किया जाए। तो जवाब देखिए, जवाब पोस्टपोन्ड है। 40 आयतों के बाद 41 आयत जो 10वें पारे की पहली आयत है, उसमें जाके जवाब दिया जाएगा कि वालमु अन्नमा गनिमतुम और लिल्लाहि वलिरसूल के आगे 5 हिस्से किए जाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा असूल है, कहा भी माल को छोड़ो, अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि माली मामलात के लिए परेशान हो, अभी ज़रा तुम आपस के ताल्लुकात तो ठीक करो। याद रखिए, मुसलमान गिरोह जब तक उसके दिल आपस में न मिले हों वो दीन का काम क्या करेंगे। इसलिए फरमाया कि वो तो अल्लाह और उसके रसूल का मामला, यानी उन पर डाल दो, वो खुद ही इसको मामले को निबट लेंगे और वो खुद ब खुद इसके लिए जो हुक्म देना है अपने वक्त पे तुमको भी बता देंगे। जब तुम इस दर्जे पे पहुंचोगे तुम्हें भी एक एक चीज़ का पता चल जाएगा, लेकिन तुम क्या करो इसको बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिख सकें, हाईलाइट कर सकें। ये हैं वो की पॉइंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि एक चाबी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सक्सेस, मुफ्लहून, फलाह, कामयाबी, और उस चाबी के दंदाने क्या है, फत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। पहले अल्लाह का डर तो पैदा करो। और याद रखिए, तकवा वो नहीं है जो सिर्फ आज तक हमने सुना। मेरा ख्याल अब तो कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने रमज़ान और तकवा सीढ़ी ना सुनी हो। उसमें कितनी तफसीरें, तारीफें, और पिछले साल मेरा ख्याल मैंने 10-12 मुख्तलिफ डेफिनेशन से तकवा को कई मुख्तलिफ लेक्चर्स में रखा था, और मेरा ख्याल है कि वो सब वेबसाइट पर मौजूद भी है। लेकिन कहने का मतलब यह कि सबसे पहले अल्लाह का डर इख्तियार करो। गुनाहों से जैसे बचते हो ना, कोशिश करते हो, इस तरह नेकियों के मौाक़ों को भी परखो। छोटी छोटी बातों पे नेकियों को छोड़कर गिव अप करके घरों में ना बैठ जाओ। बिस्तरों को छोड़ दो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। सोने वाले, ख्वाब देखने वाले कभी कहीं नहीं पहुंचते, वो उठते हैं तो अपने बिस्तर पे ही होते हैं कसल मसलते हुए, जिसकी चादर भी ख़राब हुई होती है और कोई उसमें खूबसूरती नहीं रही होती। लेकिन जो उठ के चलती दुनिया में, जीती दुनिया में, और आँखुली आँखों से ख्वाब देखते हैं, फिर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी देखते हैं। तो कहा तुम तकवा इख्तियार करो। और दूसरी बड़ी चीज़, वसली हुजात बैनिकुम, और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखो। अगर आपस में रहने वालों के ताल्लुकात ठीक ना हों तो बताइए क्या करेंगे, किसको फ़ायदा देंगे। अल्लाह बता रहा है कि देखो तुम्हारे इत्तेहाद ने तुम्हें जंग जितवाई है, ऐसा ना हो कि इख्तलाफात से ये जंग हार जाओ, जिसकी एक झलकी फिर गज़वे उहद के मैदान में हल्की सी सूरत में हमें दिखती है, जो हम सूरत आल इमरान में देख चुके। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि तुम जब किसी चीज़ को अपना हक समझते हो ना, तो तुम उसको लेने के लिए लड़ते हो। दुख की बात है, आज जो स्टाइल ऑफ लिविंग हमारे पास है और जिसको आप कह लीजिए अपने हक मांगने का सूल है, आज दुनिया ने वकालत को इस तरह आम कर दिया, हर बंदा अपना वकील बना फिरा। विमेन राइट, ह्यूमन राइट, फलां राइट, फलां राइट, फलां राइट, सबको पता है। इस्लाम ने राइट्स मांगना नहीं सिखाया, क्योंकि इस्लाम के मिजाज में तहम्मुल है। इस्लाम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन? बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुलाजमों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है ना, तो उसके अंदर बंदगी आती है, आजजी आती है, टूटता है। हर चीज़ अच्छी से अच्छी करके भी कहता नहीं उतनी नहीं अच्छी हुई, कहीं ना कहीं मेरी तवज्जो भटकी थी, मैंने उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। लेकिन जब इंसान राइट्स मांगता है ना, तो यूं गर्दना करती है, फिर उठता है, फिर सर उठाता है, फिर कहता है मेरा हक किधर है, किसने मेरे साथ जुल्म किया, ज्यादती की, वो एक नया ही पोस्चर बन जाता है। इस्लाम यहाँ ये सिखाता है कि तुम फतह को अपना हक समझते हो, तुम्हारा हक नहीं है। देखिए, यह एक बहुत बड़ी बात है कि ये सोचना कि चूँकि हम हक पे हैं तो फतह हमें मिलेगी, चूँकि हम बहुत अच्छा काम करें तो हम कामयाब होंगे, इस बुत को तोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि इस सारी चीज़ों में जो बुत टूट रहा है ना, वो ये है कि तुम बहुत भी अच्छे हो, तुम बहुत इखलास से भी कर रहे हो काम, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत भी करते और कराते हो और तुम्हारी हो गई, लेकिन फतह तब होगी जब अल्लाह का हुक्म होगा। लेकिन जब इंसान अपनी ज़ात पे मान करे, हम जैसा काम कौन कर सकता है, हमारे जैसे लोग कौन है, हमारे अखलाक से अच्छा अखलाक किसका है, तो याद रखिए ये भी अंदर का एक बुत बन जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहले अपनी ज़ात को तकवा की कैंची से ट्रिम करो, फिर बात बनेगी, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। पहले जाके अपनी अमली ज़िंदगियों को तो टटोलो, कहाँ इताअत करते हो, कहाँ फिसल जाते हो। और याद रखो, अगर तुम मोमिन हो, ईमान की ये शरायत हैं, कौन होते हैं मोमिन, अगली आयतों में इसका तज़किरा, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, बेशक सच्चे मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं। देखिए, इन्नमा कलमा हसर ओनली के मानों में, यानी अगर कोई खुद को ईमान वाला कहना चाहता है तो सिर्फ यही है, मैं और आपका कलम पकड़े और ये लिख के अपने अंदर चेक करें, चेक लिस्ट के पॉइंट, क्या मैं हकीकी मोमिना हूँ, क्या इस साल इस जिंदगी तक पहुँचने तक मेरा इस्लाम ईमान की दर्जों पे पहुँच चुका, तो कौन सी सिफात हैं, आइए एक एक देख के अपनी लिस्ट में खुद बढ़ाते जाएं। सबसे पहली सिफत इनकी क्या है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, अहले ईमान, सच्चे अहले ईमान तो वो हैं कि जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुन के डर जाते हैं, वजीलत कुलूबुहुम, उनके दिल लरस जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो चिंगम चबाते, पेंसिल से खेलते, सेल फोन को ढूंढते हुए कुरान नहीं सुनते। कुरान सुनते वक्त उनका दिल अंदर से यूं कांप रहा होता है कि जैसे कोई किसी अदालत में खड़ा हो और अपने बारे में फैसला सुनने के वक्त। खुद से पूछिए, दिल लरसते हैं अल्लाह का जिक्र सुन के, अल्लाह का कोई नाम ले ले मेरे सामने। हम तो कुरान सुनते वक्त भी मचल रहे होते हैं, उस वक्त भी हमारी इधर से उधर निगाहें होती हैं, हम तो तरावियों में भी इधर से उधर देख रहे होते हैं, कब तरावी ख़त्म हो, पानी पिए, थोड़ी देर बैठ जाए। जिक्र के साथ खौफ, वजीलत, और इसकी डिटेल हमने की थी जब तफसीर में पढ़ा था इसको। दूसरी सिफत, वजातुलमाना, और जब अल्लाह की आयत इनके सामने पढ़ी जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है, वो वहाँ से सूखे नहीं उठते, वो जिस दिल से इस कमरे में आए थे उस दिल से नहीं आते जाते, उनका ईमान बड़ा होता है। जैसे आप देखिए कि कोई किसी जगह खाने के लिए बैठे, खूब उसके सामने हैवी फूड हो, फ्राइड, रोस्टेड, एनर्जेटिक, नट्स हैं, दूध है, और वो तकरीबन 3 घंटे तक वहाँ बैठा रहे, आप मुझे बताइए कि उस होटल में उसके आने के वक्त अगर कोई उसको वेइंग मशीन पे बिठाए या खड़ा करे और जब वहाँ से निकल के उसको बाहर करे, तो क्या उसका वेट नहीं बढ़ा होगा? वो जितना पानी पिया, जितना खाना खाया, वो किलोज और लीटर्स की सूरत में उसके जिस्म में बन गया। जिस तरह ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई खा के उठे तो उसका वेट ना बढ़े, इस तरह ये मुमकिन ही नहीं कि कोई कुरान की आयतें सुने और उसके ईमान का वजन ना बढ़े। ये हम सब के लिए क्राइटेरियन है जो आप माशाल्लाह 1 साल से बढ़ते आ रहे हैं। ईमान बढ़ता, और अगर ईमान नहीं बढ़ता तो दुआ कीजिए। इसके लिए फिर इंसान का ईमान बढ़ता है ना, तो फिर वो एकदम अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर, मैं तेरी किताब को इसका ड्यू हक दूंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी। देखिए ईमान गूंगा बहरा नहीं है, ईमान मुर्दा नाम चीज़ का नाम नहीं है, ये बेजान नहीं है, ये जिंदा चीज़ है। एक प्लास्टिक के फूल है, एक असली फूल है। प्लास्टिक के फूल 100 साल भी पड़े रहेंगे तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन असली फूल आज खिला हुआ है कल हल्का होगा, पानी देंगे तो और खिलेगा और नहीं देंगे तो 2-3 दिन में मुरझा जाएगा। ईमान एक जिंदा हकीकत का नाम है, ईमान बढ़ता भी और घटता भी है। अगर आप इस महफिल में बैठकर अपने ईमान के अंदर कमी बेशी नहीं पा रहे तो आप स्टेगनेंट हैं, आप मुर्दा, आप अंदर से फौत हो चुके हैं, आपके अंदर की डेथ डिक्लेयर हो चुकी है। अब आपको किसी जगह दफन करने की ज़रूरत है। जैसे किसी जिस्म को ऑक्सीजन से खाली पाकर डॉक्टर कहते हैं कि अब इनकी डेथ फाइनल हो गई, तो हम सब पूछे क्या हमारा ईमान यहाँ बढ़ता है? और ईमान जब बढ़ता है तो उसका ला मुहाला नतीजा वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, फिर अपने रब पे तवक्कुल बढ़ता है। फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी के छोटे छोटे गम परेशान नहीं करते, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पता नहीं मेरी शादी होनी भी है कि नहीं, पता नहीं मेरी इतनी उम्र होगी मेरा क्या होगा, पता नहीं मुझे बच्चा मिलना है कि नहीं, पता नहीं अब इस दीन पे अमल कर रही हूँ मेरा घर बचेगा कि नहीं। नहीं, तवक्कुल सारे मामले रब के हाथ में। जब इंसान अल्लाह पे तवक्कुल करता है तो फिर उसके बाद उसका अमली इजहार